फरमाया तू फिरौन के पास जा, वो सरकश हो गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, रब इशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दता मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जुबान की गिराह को सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझें, और मेरे लिए मेरे अपने कुंबे से एक वजीर मुकर्रर कर दे, हारून जो मेरा भाई है, इसके जरिए से मेरा हाथ मजबूत कर दे और इसको मेरे काम में शरीक कर दे ताकि हम खूब तेरी पाकी बयान करें, अपने गुण नहीं अल्लाह की पाकी बयान करें, और खूब तेरा चर्चा करें। अपना चर्चा नहीं, अपनी शोहरत मकसूद नहीं है, अपना नाम बड़ा करना मकसद नहीं है, फेमस होना नहीं है, लाइक्स में आना नहीं है, बल्कि तेरे चर्चे करें, और तू हमेशा हमारे हाल पर निगरान रहा है। जरा सा मूसा के इस कलाम में से अमल की बातें लीजिए। पहली बात है दुआओं से सहारा लीजिए। आप में से कोई ऐसी सिस्टर नहीं होगी मेरे गुमान के मुताबिक जिनको ये दुआ नहीं आती। पढ़ते हैं सुबह आप लोग? सब पढ़ते हैं। 30, 32, 34 दिन जब पढ़ेंगे तो याद तो हो ही जाएगी। इसको अपनी हिर्ज़े जान बना लें। और फिर ये कहूँगी, जब बच्चों को या मियाँ को नमाज के लिए कहना हो, चुपके से दिल में ये दुआ पढ़ लें, अई यफ़क़हू क़ौली। किसी बंदे को, मैंने तो अपने लिए एक गिरा बांधी हुई है, मैंने किसी बंदे को अपनी को बात कहनी है, यानी यहाँ बैठना तो एक किस्म का फंक्शनल बैठना होता है ना, यहाँ तुम खुतबे में पढ़ते ही हैं, इसके बगैर तो वल्लाह ही जुबान ही नहीं खुलती, लेकिन किसी बंदे से आपने कुछ कहना है, मियाँ से कोई बात मनवानी है, घर वालों से मनवानी है, किसी से, साथियों से, ये दुआ पढ़ना आपको इतना फायदा देगा कि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझे। इसके बावजूद भी कोई समझ जाए तो बड़ी बात है, लेकिन दुआओं से बहुत फायदा होता है। दूसरी बात आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के लिए फरमाइश की, दिल खुला था। हम होते हम कहते सिर्फ मुझे ही मिल जाए, फिर मेरा नाम आएगा, फिर सारा खानदान कहेगा इस सारी बहनों में से अल्लाह ने इसको चुना है, वाह 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 वाह, हाँ 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 भाई, आप 6 बहने हैं, अल्लाह ने आपको चुन लिया, तो बाकी 5 क्या आपकी दुश्मन हो गई? तो याद रखिए, ईमान वाला हमेशा दूसरों के लिए शेयरिंग और केयरिंग होता है। फिर अगली बात देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम की इस टॉक से और इस छोटे से पॉइंट से ये पता चल जाता है, एक अकेला 2 11। अच्छा, घर का ही बंदा क्यों मांगा? क्या ये फेवरेटिज्म नहीं है? नहीं, ये फेवरेटिज्म नहीं है। जितना कंफर्टेबल इंसान अपने घर वालों के साथ दीन का काम करके होता है, किसी और के साथ नहीं होता। इसी से लाइक माइंडेडनेस भी है। और आप देखिए कि एक जैसी आदतें, एक जैसे अतवार, एक जैसा माहौल, तो ये बहुत ज्यादा फायदा देता है इंसान को। फिर इसके बाद एक और चीज नोट करिएगा, और वो क्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने असल तबलीग का जो मकसद है ना, उस पर नजर रखी, और वो क्या है, अल्लाह का नाम बुलंद हो। बस ये मेरे आपके लिए इसमें से नुक्ते हैं। जब अल्लाह आपको मुझे मौका दे, हमें भी यही काम करना है। जवाब सुनिए दुआ का, फरमाया दिया गया जो तूने मांगा है मूसा, हमने फिर एक मरतबा तुझ पर एहसान किया। ये कौन सा एहसान है बताइए? अपने दीन के लिए चुनना। देखिए, किसी को जॉब मिले, कोई किसी यूनिवर्सिटी में इलेक्ट हो जाए, किसी जगह उसका नाम मिल जाए, अल्लाह सुबहाना ताला उससे बड़ी खूबी इधर दे रहे हैं, और वो क्या है कि तुझ पर मैंने एहसान किया, तुझे अपने काम का बना लिया। याद करो वो वक्त जबकि हमने तेरी माँ को इशारा किया, ऐसा इशारा जो वही के जरिए से ही किया जाता है, कि इस बच्चे को संदूक में रख और संदूक को दरिया में छोड़ दे और दरिया इसे साहिल पर फेंक देगा। यहाँ है उम्मे मूसा की बात। जरा सा सोचिए, आप में से अक्सर शादीशुदा खवातीन है, माएँ होंगी, इमेजिन तो कीजिए उम्मे मूसा के दिल पे क्या गुजरी होगी, कितनी दफा उसको उठाया होगा, मुंह चूमा होगा, प्यार किया होगा, नहलाया धुलाया होगा, अच्छा मेरे बच्चे रब के हवाले, जो भी होगा। ये लोग रोबोट्स नहीं थे, जज्बे थे, बस इन्होंने अपने जज्बात को अल्लाह के हुक्म के आगे दबा लिया था। ऐसे हम तो अपने बच्चे को बेबी सिटिंग में देते हुए घबराते हैं, पता नहीं मेरे बगैर बच्चा रहेगा कैसे, दरिया की मौजों के सुपुर्द कर रही है माँ। फिर यहाँ वही थीम पे आ जाइए, जैसी माँ वैसा बेटा। अगर माँ मरियम है तो बेटा ईसा है, और अगर यहाँ माँ उम्मे मूसा है तो मूसा देखे कितनी जरूरत वाला है। और आप देखिए कि मूसा की जिंदगी में समंदर का बड़ा दखल है, और आपको पता है उस मूसा किसको कहते हैं, पानी से निकला हुआ। तो बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह के हुक्म पर ये डाल दिया, और असल बात भी यही है। देखिए, मूसा ने छड़ी पकड़ी हुई थी, दुनियावी सहारा लग रहा था। अगर मूसा की माँ को यहाँ देखे तो बेटा बुढ़ापे का सहारा होगा, औलाद है, अल्लाह क्या चाहता है, ये भी एक जुमला बड़ा बड़ा लिख ले, जेम है, दुनियावी सहारे छोड़े तो अल्लाह को थामा जाता है। अल्लाह को थामने से पहले दुनियावी सहारे छूटते हैं, हम दुनिया के सारे मामलात को पकड़े रखते हैं और साथ कहते हैं अल्लाह को भी पकड़ ले, ये नहीं होगा। आप सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, एक पाँव रखते हैं, फिर आप उठाते हैं तो दूसरी पे जाता है। कोई ये कहे कि ये पिछला पाँव नहीं उठाऊंगा, अगला जाए, तो वो बच्चों की तरह पप 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 करेंगे। आप बस एक पाँव उठता है फिर दूसरे पे जाता है। तो दुनिया के झूठे सहारों की उम्मीद ना रखिए, बल्कि दूसरी चीज़ों पे रखिए, फिर देखिए कि आपको फायदा होगा इन सारी बातों से। खैर, अल्लाह ताला ने मूसा पर जो एहसानात किए थे उसमें से एक और एहसान किया है, वल्कैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, मैंने अपनी तरफ से तुझ पर एक मोहब्बत तारी कर दी। मूसा अलैहि सलाम में एक अट्रैक्शन थी, और कुछ बच्चों में होती है, शक्ल जैसी भी हो रंग जैसा भी हो, कुछ बच्चे बड़ी कशिश रखते हैं। मूसा अलैहि सलाम को जो देखता था उसके दिल में मूसा की मोहब्बत थी। फिरौन के ऊपर भी तो यही मोहब्बत छा गई, वरना तो कब का मूसा को कत्ल करवा चुका होता। और ऐसा इंतजाम किया कि तू मेरी निगरानी में पाला जाए, याद कर जबकि तेरी बहन चल रही थी, फिर जाकर कहती है कि मैं तुम्हें उस घर वालों का पता दूं जो इस बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश करे। या फिर देखिए, एक ही घराने के लोग एक दूसरे के दीन के मुहाफिज हो रहे हैं। इस तरह हमने तुझे फिर तेरी माँ तक पहुंचा दिया ताकि इसकी आंख ठंडी रहे और वो रंजीदा ना हो। या फिर मेरे आपके लिए अमल की बात है, एक एक आयत में तो 10-10 अमल है, अल्लाह में अमल वाला बना दे। मूसा ने अल्लाह के कहने पे ऐसा छोड़ा, अल्लाह ने उसको सांप बना दिया, अल्लाह के कहने पे सांप को पकड़ा, दोबारा चमकती हुई छड़ी बन गई। इसी तरह देखिए, मूसा की माँ ने बेटे को डाल दिया दरिया की मौजों में, अल्लाह ने उस बेटे को चंद दिन बाद दोबारा भेज दिया माँ के पास, वो कैसे? वाकया है मारूफ कि मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचा दिए गए, किसी का दूध ही नहीं पी रहे, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। खैर, मूसा ने जब अपनी माँ का दूध पी लिया तो फिरौन ने क्या ऑफर दी कि औरत तू भी आ जा मेरे महल में, इधर ही रह ले, क्योंकि मैं नहीं आती, मेरे और भी बच्चे हैं, फिर क्या करो? हाँ, करना है तो ये बच्चा मुझे दे दे, तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिला दिया करूंगी, अच्छा ले जा। ना सिर्फ ये कि मूसा उस घर में वापस गए, फिरौन के तोहफे तहाइफ खाने पीने सारे मूसा के जाते, जिसमें उनके बाकी बहन भाई भी पल गए। ये है अल्लाह के नबी की हदीस के मोमिन की मिसाल उम्मे मूसा की है, अपने ही बच्चे को दूध पिलाए और पैसे भी पाए, उजरत भी पाए। ये जो हम दुनिया में नेकियां करके आखरत की आस में कुछ जमा करते हैं ना, ये बाद की बात है, ये दुनिया में आपको इसकी लज्जतें मिलने लगती हैं, आपकी दुनिया इतनी खूबसूरत होने लगती है कि जो जितना मर्जी उस पर रश करे। तो बात का खुलासा, जब कभी अल्लाह आपसे मुझसे भी को मुतालबा करे तो चल पड़े। और आप देखिए कि यहाँ भाई बहन की बात भी समझिए, सबसे अच्छा तोहफा किसी के लिए अगर कोई है, मतलब भाई है आपका, एक बच्चा है, आप उसको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, तो सबसे प्यारा तोहफा है कि उसको भाई या बहन दे दें। आज कम बच्चों का शौक, बाज दफा लोगों को इस पे माइल करते एक ही बच्चा काफी है, एक बेटा एक बेटी, कितना मारूफ जुमला है, दो बच्चे खुशहाल घराना, बिल्कुल खुशहाल नहीं है। एक बेटा ना तो उसको एक भाई दे दीजिए, अल्लाह चाहेगा तो बेटा होगा, बेटी हुई तो फिर ट्राई कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है, बेटी है फिर बेटी मांगे। तो बहन भाई के रिश्तों में बहुत बात है, आजकल कम बच्चों के शौक में ये चीजें भी छिन गई, इसीलिए देखिए बच्चे तंग करते हैं। पहले एक घर में कई बच्चे होते थे, खुद ही पल जाते थे, 2 साल का होने तक एक बच्चा दूसरा हुआ तो पहला बच्चा जो अपने हाथ पे चल पड़ता था, और तीसरी बच्ची जो होती थी वो अपने छोटे बहन भाई को पालने में मददगार साबित होती थी, माएं भी फारिग रहती थी। आज पता नहीं क्या कुछ हो गया, हमारे हालात इतने बदल गए, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें हकीकत में अल्लाह के इन हुक्मों पे अमल करने वाला बना दे। इस तरह हमने तुझे फिर तेरी माँ के पास पहुंचा दिया ताकि इसकी आंख ठंडी रहे और वो रंजीदा ना हो। और ये भी याद करो कि तूने एक शख्स को कत्ल किया था, हमने तुझे इस फंदे से निकाला और तुझे मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारा। इसको हाईलाइट करे, फतन्ना का फतूना। अल्लाह ताला ठोक बजा के देख रहे थे मूसा को कि कहीं ये बीच रस्ते में हट तो नहीं जाएंगे। और आप देखिए कि अल्लाह ताला का ये कहना कि हमने तुझे मुख्तलिफ आजमाइशों में डाला, जब अल्लाह किसी को आजमाइश कहे तो वो कितनी बड़ी आजमाइश होगी, ये भी नोट कीजिए। और तू मदीन के लोगों में कई साल ठहरा, फिर अब ठीक अपने वक्त पर तू आ गया। इसको हाईलाइट करें, ये भी बात बाद में समझ आती है, शुरू में नहीं समझ आती। कुछ अरसे के बाद बंदे को समझ आती है कि मैं इस लेवल पे तो कभी पहुंच ही नहीं सकती थी अगर अल्लाह मुझे ना पहुंचाता। और वो क्या है, सुम्म जीत आला कदरी या मूसा। आप लिखिए अल्लाह का सेट करदा क्राइटेरियन, उस पे जब बंदा आता है ना फिर अल्लाह उसको जॉब देता है। जैसे डॉक्टर बनने से पहले आपको पता है कि कई मुख्तलिफ मरहले होते हैं ना, हाउस जॉब होती है, कुछ लोग पता नहीं क्या बोलते हैं उसको इंटर्नशिप करते हैं, इधर भेजते हैं उधर भेजते हैं मुख्तलिफ जगहों पे भेजते हैं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ये सारे मरहले किए। पहले जिशन में रहते थे, वहाँ से मिस्र गए, मिस्र से मदियन गए, अब मदियन से वापस मिस्र आ रहे हैं। ये कुछ अल्लाह करवाते हैं। आज भी याद रखिएगा आप सब जो यहाँ आए कहाँ कहाँ से आके बैठे हुए हैं, कोई इधर से कोई उधर से, ये अल्लाह के काम होते हैं। आपको तो नहीं पता कि अल्लाह ने आपको किस प्लान के साथ यहाँ बिठाया है। हो सकता है आप यहाँ से जो थोड़ी सी खैर लेकर जाएं, इससे बहुत सारी खैर आप अपने इलाके के लोगों को बांटने लग जाएं। तो इन मराहिल से कभी घबराया ना करें। कभी ट्रैफिक में फंस गए, फिर क्या हुआ, जिक्र कर लेंगे। कभी रास्ता खुला मिल गया, तेज पहुंच गए, कोई बात नहीं, यहाँ आके बैठ के सबक याद कर लेंगे। राजी रहिए, क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ आजमाइशों की बात करते हैं और इन आजमाइशों से गुजार कर अल्लाह ताला बंदे को फिर वो कुछ देता है जिसका एक इंसान अंदाजा भी नहीं करता। ए मूसा, मैंने तुझको अपने काम का बना लिया है, दुआ करें अल्लाह मुझे भी अपने काम का बना ले। दिल की गहराई से मांगेंगे ये दुआ, तो फिर जब ऑर्डर्स आएंगे अल्लाह की तरफ से काम के तो घबराइएगा नहीं। दुआएं हम बहुत मांग लेते हैं, लेकिन बाद में जब अमली मैदान में कूदते हैं तो बाज दफा फिर हम कहते हैं मैंने इतनी तो नहीं मांगी थी, अल्लाह जी जरा थोड़े ही कर दे मेरे ऑर्डर। आप देखिए किसको ऑर्डर ज्यादा आते हैं, जिस कंपनी का माल पसंद आ जाता है। अल्लाह को जिस बंदे का काम पसंद आ जाता है ना, उसको फिर सुबह शाम ऑर्डर आते हैं, और वीकडेज में भी आते हैं तो वीकेंड पे भी आते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं अल्लाह हमें सिर्फ रमजान के रमजान का ऑर्डर चाहिए, हमें बस हर साल रमजान में दौरे कुरान करवा देना और बस यही काफी है। कुछ कहेंगे नहीं हमें आगे रमजान के बाद भी कुछ करना है, कुछ कहेंगे अब हमने, बोलिए मैं क्या कहने वाली हूँ, सारी जिंदगी कुछ करना है। अल्लाह अब हमारा नाम ना काटना कि बस अब तू मेरे से थोड़े दिन कुछ काम ले ले, बाद में कि अच्छा बस खत्म, अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो किसी और के साथ करते हैं, कब मैंने तुझे अपने काम का बना लिया। जा तू और तेरा भाई मेरी निशानियों के साथ, और देखो मेरी याद में कमी ना करना। नोट कीजिए अल्लाह की याद में कमी नहीं करनी। कितने ही मसरूफ क्यों ना हो जाए आप, कितना ही आपका बिजी स्केड्यूल क्यों ना हो जाए, जिक्र से गाफिल ना हो, क्योंकि ये जिक्र आपकी एनर्जी है, ये आपका एनर्जी ड्रिंक है। जो तुम दोनों फिरौन के पास वो सरकश हो गया है, इसे नरमी के साथ बात करना, इसको भी जरा सा नोट कर लें। फिरौन के पास जा रहे हैं और फिरौन में क्या खामी नहीं होगी, और क्या फरमाया जा रहा है, नरम बात करो। आज हम जाते हैं कहते हैं जरा चार सुना के आना, जरा खूब जरा उनको झंझोड़ के आना, नहीं नरम बात करो, शायद कि वो नसीहत कबूल करे या डर जाए। क्या पता चला कि वक्त के फिरौन की भी हिदायत से कभी मायूस ना हो कि उसको हिदायत नहीं मिलेगी। दोनों ने अर्ज किया परवरदिगार हमें अंदेशा है कि वो हम पर ज्यादती करेगा या पिल पड़ेगा, क्योंकि उसका जबर मारूफ था। फरमाया डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब कुछ सुन रहा हूं और देख रहा हूं। अब बताइए इससे बड़ी इंश्योरेंस और क्या चाहिए, इससे बड़ी श्योरिटी और क्या लेनी है आपने मैंने दीन के काम में। बाहर पुलिस में इनको खड़ा कर लें, अल्लाह ना करे ऐसे हालात आए, क्या कर लेगा वो, बचा लेगा मुझे आपको। हम जितनी मर्जी याद रखिए प्रोटेक्शंस ले लें, जब अल्लाह साथ होता है तो कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। और मूसा को कितना सुकून मिला होगा कि अल्लाह ताला मेरे साथ है। कैसे साथ थे अल्लाह ताला, अपनी समात और बसारत के साथ। जो इसके पास और कहो कि हम तेरे रब के भेजे हुए हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ जाने के लिए छोड़ दे और इनको तकलीफ ना दे, हम तेरे पास तेरे रब की निशानी लेकर आए हैं और सलामती है उसके लिए जो राह रास्त की पैरवी करे। हमको वहीं से बताया गया कि अजाब है उसके लिए जो छुटलाए और मुंह मोड़े। यहाँ पे आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी और भेज दिया। अब यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम का एक अगला दौर शुरू होता है। फिरौन का दरबार है, वहाँ पहुँच चुके हैं। आप जरा देखिए कि वो सारी इंस्ट्रक्शंस मूसा अलैहिस्सलाम के काम आ गई। कैसे, फिरौन का जवाब सुनिए। काला फमन रब्बुकुमा या मूसा, फिरौन ने कहा अच्छा तो फिर तुम दोनों का रब कौन है मूसा। इतनी हैरत हुई फिरौन साहब को कि मेरे सिवा कोई और रब हो सकता है? अच्छा कोई है तो बताओ वो कौन है? मूसा ने जवाब दिया, हमारा रब वो है जिसने हर चीज़ को इसकी साख बख्शी, फिर इसको रास्ता दिखाया। सुम्मा हदा, ये लफ्ज़ हदा को नोट कर लीजिए। अल्लाह ताला ने बंदों को दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की हिदायतें दी हैं। अगर इस वक्त नोट करना चाहें तो हिदायत की चार किस्में हैं, एक जगह जाके 10 भी लिखाऊंगी अगर मौका मिला तो। एक है हिदायतें आमा, सारी कायनात को अल्लाह ने हिदायत दी हुई है। मसलन मछली के बच्चे को पैदा होते ही अल्लाह तैरना सिखा देते हैं, परिंदे के बच्चे को उड़ना सिखा देते हैं, इंसान के बच्चे को दूध पीना सिखाते हैं। एक दूसरी होती खास रहनुमाई, अच्छे और बुरे का फर्क, ये भी अल्लाह आपकी रहमत से दे देता है। तीसरी हिदायत होती है वो हिदायत जो मंजिल पे पहुंचा दे, और चौथी हिदायत वो होती है कि जिससे फिर आखिरत में जन्नत मिलेगी। अल्लाह ताला ने फिरौन के दरबार में मूसा अलैहि सलाम के मुंह से ये जुमले सुनवा दिए कि देखो फिरौन, हमारा रब जिंदगी गुजारने के भी तरीके सिखाता है और उसके बाद आखिरत में जन्नत में जाने के भी तरीके सिखाता है। फिरौन के लिए एक बहुत बड़ी चोट थी, क्योंकि उसने सोचा था कि सारे कानून और लॉज तो मैं अच्छे बनाता हूँ, सारा कुछ तो मेरा, इसीलिए बोला। अब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, काला फमा बालुल कुरूनिल उला, फिरौन बोला और पहले जो नस्लें गुजर चुकी हैं फिर इनकी क्या हालत थी? उलझाना चाहा। मूसा ने कहा, इसका इल्म मेरे रब के पास है, एक नविश्ते में महफूज, मेरा रब ना चूकता है ना भूलता है। इससे पता चलता है कि मुबल्लिग को पता होना चाहिए कि किस बात का जवाब देना है किसका नहीं देना, जैसे एक अच्छा बैट्समैन जानता है किस बॉल को खेलना है और किसको नहीं खेलना। वही जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बिछाया और इसमें तुम्हारे चलने को रास्ते बनाए और ऊपर से पानी बरसाया, फिर इसके जरिए से मुख्तलिफ इकसाम की पैदावार निकाली, खाओ और अपने जानवरों को भी चराओ, यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं अक्ल रखने वालों के लिए। इसी जमीन से हमने तुमको पैदा किया है और इसी में हम तुम्हें वापस ले जाएंगे और इसी से तुमको दोबारा निकालेंगे। ये है मट्टी से मट्टी का सफर, मट्टी से बने थे, मट्टी में जाएंगे और मट्टी में मिल जाएंगे। सोचिए जरा, इस मट्टी को अल्लाह ने इतना हुसन दिया हुआ है, ये चारों तरफ जो बाहर फिर रही है, क्या फिर रही है? मट्टी फिर रही है। किसी को गोरा कर दिया, किसी को काला कर दिया, किसी को चिट्टा कर दिया। तो छोटी सी एक्टिविटी रखें, कभी मौका मिले दिन में, रात में, शाम में, बैकयार्ड में चले जाएं, खुली जगह पे लॉन में जाएं, कच्ची मट्टी को हाथ में पकड़ें और इसी आयत को जहन में लाइए, मिन खलकनाकुम वफी हनुईदुकुम व मिन हनुखरिजुकुम तारतन उखरा। तो इस मट्टी से मेरा आपका ताल्लुक टूट नहीं सकता, तो मट्टी में जाने से पहले मट्टी हो जाए, आज टूट जाए, आज झुक जाए इससे पहले कि झुका दिए जाए। हमने फिरौन को अपनी सभी निशानियां दिखाई मगर वो झुटलाए चला गया और ना माना। कहने लगा, मूसा क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि अपने जादू के जोर से हमको हमारे मुल्क से निकाल बाहर करे? अच्छा, हम भी तेरे मुकाबले में वैसा ही जादू लाते हैं, तय कर ले कब और कहाँ मुकाबला करना है, ना हम इस करारदाद से फिरेंगे ना तू फिरना, खुले मैदान में सामने आ जा। मूसा ने कहा, जश्न का दिन तय हो गया और दिन चढ़े लोग जमा हों। फिरौन ने पलट कर अपने सारे हथकंडे जमा किए और मुकाबले के लिए आ गया। मूसा ने इन मौके पर गिरोह मुकाबिल को मुखातिब करके कहा, शामत के मारो, ना झूठी तोहमतें बांधो अल्लाह पर, वरना वो एक सख्त अजाब से तुम्हारा सत्यानाश कर देगा, झूठ जिसने भी घड़ा वो नामुराद हुआ। मुकाबले से पहले तबलीग, ईमान वाला हर मौके को दावा ऑप्शन समझता है। जादूगर थे, मूसा का मुकाबला करने आए, मूसा को ये तो पता था कि मैंने जीत ही जाना है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको आके दावत दी और ये बात सुनके जादूगरों के दिल में थोड़ी सी हुथल पुथल शुरू हो गई। अल्लाह ताला उसका तस्करा करते हैं, फतनाज़ो अमरहुम बैनहुम, ये सुनकर इनके दरमियान इख्तलाफ राय हो गया और वह चुपके चुपके बाहम मशवरा करने लगे। ये असल में काम है करने का। मैं और आप किसी को भी अल्लाह के दीन से जोड़ते हैं ना, इस्लाम से, चले आप कहें कि दावा करते हुए, सबसे पहले अगले के जो बातिल नजरियात है ना, उसके अंदर एक हलचल पैदा करें। और याद रखिए, कुछ लोगों के अंदर अगर सिर्फ कुरान सुनकर हलचल ही पैदा हो जाए ना, तो ये भी हिदायत का पहला सीना बन जाती है। हाय जो करते थे वो ठीक नहीं, हाय जो आज तक सुनते थे उसमें ये कमी थी वो थी, अब अमल नहीं बदला लेकिन अंदर शक डाल दिया। अल्लाह के हुक्म से जिसके दिल में सच्चाई होगी, तासुब नहीं होगा, वो जरूर इस चीज को छोड़ देगा। अब आगे देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनके अंदर ये बात की, सोच तो पड़ी लेकिन नतीजा क्या निकला? आखिरकार कुछ लोगों ने कहा, ये तो दोनों महज जादूगर हैं, इनका मकसद ये है कि अपने जादू के जोर से तुम्हारी जमीन से बेदखल कर दें तुमको और तुम्हारे मिसाली तरीका जिंदगी का खात्मा कर दें। इसको हाईलाइट कर लें। हर दौर में फिरौन को यही शक हुआ कि मेरा लाइफस्टाइल, मेरा स्टाइल, मेरी सोच, मेरी पॉलिसीज सबसे अच्छी हैं, और इसी के टूटने का डर था उनको मूसा की दावत से। मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसी बात नहीं की थी कि जिससे कोई इस तरह का उनको अंदेशा होता, लेकिन हर दौर में लोग हक की पुकार पर इसी किस्म के अंदेशों का शिकार हो जाते हैं। वरना अगर आप देखिए, जादू के जोर से हुकूमतें बदलती तो फिर 4-5 साल कोई निकाल जाता है एक तख्त पे, वो 4 महीने भी ना निकालता। एक आता इकतदार में तो एक हिजब इख्तलाफ उस पर जादू करके उसको उतरवा देता। ये बेकार बातें हैं, इसलिए ये सिर्फ बातें ही रह गई। खैर, मूसा का कॉन्फिडेंस देखिए, अपनी सारी तदबीरें आज इकट्ठी कर लो और एका करके मैदान में आओ, बस ये समझ लो कि आज जो गालिब रहा वो जीत गया। जादूगर बोले, मूसा तुम फेंकते हो या हम पहले फेंके? बज़ाहिर प्रोटोकॉल बहुत होता है इन चीजों में। मूसा ने कहा, नहीं तुम ही फेंको, यकायक इनकी रस्सियां और इनकी लाठियां। इनके जादू के जोर से मूसा को दौड़ती हुई महसूस हुई और मूसा अलैहि सलाम अपने दिल में डर गए। हमने कहा, डरो मत, तू ही गालिब रहेगा। ये मूसा क्यों डरे बशरी तकाजे से? फेंक जो कुछ तेरे हाथ में है, अभी इनकी सारी बनावटी चीजों को निकले जाता है, और ये जो कुछ बना कर लाए ये तो जादूगर का फरेब है, और जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकता, ख्वाह किसी शान से वो आए। और आज भी यही हुक्म है, जादूगर कभी कामयाब नहीं होते, वरना सड़कों के किनारे सारे दिन की धूल न सहरे होते। देखिए, अगर जादू के जोर से किस्मतें लोगों की बनाते तो जादूगर सबसे पहले अपनी किस्मत बनाता। आखिर को यही हुआ, सारे जादूगर सजदे में गिरा दिए गए और पुकार उठे, आमन्ना बि रब्बी हारून व मूसा, मान लिया हमने मूसा और हारून के रब को। फिरौन ने कहा, तुम इस पर ईमान लाओ कबल इसके कि मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता। मालूम हो गया कि ये तुम्हारा गुरु है जिसने तुम्हें जादूगरी सिखाई थी। अच्छा, अब मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से कटवाता हूँ और खजूर के तनों पर तुमको सूली देता हूँ। थ्रेट कर रहा है, टॉर्चर। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और देर पाए, यानी मैं तुम्हें ज्यादा सख्त सजा दे सकता हूँ या मूसा। जादूगरों ने जवाब दिया, कसम है उस जात की जिसने हमें पैदा किया, ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि हम रोशन निशानियां सामने आ जाने के बाद भी सदाकत पर तुझको तरजीह दें। जो कुछ तू करना चाहे कर ले, तू ज्यादा से ज्यादा बस इसी दुनिया की जिंदगी में फैसला कर सकता है। हम तो अपने रब पर ईमान ले आए ताकि वो हमारी खताएं माफ कर दे और इस जादूगरी पर जिस पर तूने हमें मजबूर किया था दरगुजर फरमाए। अल्लाह ही अच्छा है और बाकी रहने वाला है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से मिल गया? ये है ईमान। फिर बात करूंगी कि ईमान चुप नहीं रहता। छोटा ईमान, थोड़ा ईमान है, थोड़ी जरूरत, थोड़ा इजहार। ईमान स्ट्रांग है, आप अमल का पहाड़ बन जाएंगे। ये जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े को देखकर इतने जुरतमंद हो गए। आज हम मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़े हुए इस जीते जागते मोजज़े को छोड़कर कितनी जुरत पाते हैं आज? ये सवाल है आज के मुसलमान से। समझ लीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा मूसा के हाथों में था। लाठी मूसा के हाथ में थी तो असा थी या सांप थी या रास्ते काट रही थी। आज वो लाठी कुछ नहीं करती। ये कुरान नबी सल्लम का मौजज़ा है। आज हम भी तो यही पढ़ते हैं, आज हमारे भी तो घरों में यही है। इसी के तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने तमाम से हम प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन ज़रूरत है इस बात की कि इसको पकड़कर हमें यकीन आ जाए, कम से कम उतना तो आ जाए जितना फिरौन के जादूगरों को आ गया। और जरूरत से ही पता चलता है कि आपके अंदर कितनी सच्चाई है। जो लोग अंदर से डरे और कांपे होते हैं ना, वो कभी इतने जोश से बात नहीं करते। ये भी तो हो सकता था ना, जादूगर खामोश रहते, घर चले जाते, फिर मूसा के पास चुपके से आते, अकेले में कहते, मूसा हम ईमान लाते हैं, हमें उस वक्त पता चल गया था, पर वो देखो ना फिरौन भी तो पड़ा था ना, फिर पता नहीं क्या करता, और देखो ना फिर खुद को फितने में तो नहीं डालते। लेकिन उन्होंने इतना भी इंतजार क्यों नहीं किया? इसलिए कि मौत का नहीं पता कब आ जाए, और दूसरी बात वो ईमान ही क्या जिसका इजहार ना हो। ईमान तो वो है जो सर चढ़ के बोलता है। तो जिसके अंदर ईमान आएगा लोगों को जरूर पता चलेगा। ढीली बातें ढीली होती हैं और खड़ी बातें खड़ी होती हैं। इसलिए दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें यकीन दे दे कि आज भी ये कुरान उसी तरह लोगों के दिलों को बदल सकता है जैसे कल मूसा अलैहिस्सलाम के उस मोजज़े को देखकर लोगों के दिल बदल गए।